प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में दूसरी इकाई का तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम था न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन, जिसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना और न्यायपालिका की संरचना के बारे में अध्ययन किया है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, क्षेत्राधिकार या कार्यों से बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और क्या उत्तरदायित्व हैं, वह संविधान में उल्लेखित हैं, दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला क्षेत्राधिकार है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। मौलिक क्षेत्राधिकार का शाब्दिक अर्थ है कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसकी सुनवाई सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय करता है। निचली अदालतों में उन मुकदमों की सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसे मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। उसे सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, यानी सीधे उन मुकदमों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है, निचली अदालतों में उनकी सुनवाई नहीं होती है। संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक एम्पायर या निर्णय की भूमिका देता है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक एम्पायर या निर्णय की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों का केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन मुकदमों की सुनवाई होती है जो मुकदमे उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं जाते, या उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। उन मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय करता है, वही सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह व्यक्ति चाहे तो उसके पास दो विकल्प हैं, वह चाहे तो उच्च न्यायालय जा सकता है या सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय न्यायपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश भी दे सकता है। तो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, वह चाहे तो उच्च न्यायालय जा सकता है या सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। तीसरा क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय, अपील का सबसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सभी व्यक्तियों को छूट दी गई है, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक हैं, तभी वह मुकदमा उच्च न्यायालय में भेज सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा हुआ है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दें तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर लें। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। जो कानूनी मुद्दे थे उसकी दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है तो निचली अदालतों ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को बदल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों के निर्णय को बदल सकता है तथा उसके साथ उन प्रावधानों की नई व्यवस्था भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है। नीचे की अदालतों में जो मुकदमे आते हैं उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय करता है। जो उच्च न्यायालय में जो मुकदमे हैं उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। यही अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपील दर्ज कर सकता है। व्यक्ति हैं अपील दर्ज करके सर्वोच्च न्यायालय तक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहुंच सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फोर्थ क्षेत्राधिकार, चौथा क्षेत्राधिकार है शला संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अभिलेख क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार को परामर्शीय क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। परामर्शीय क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिताएं। पहली उपयोगिता है, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी भी क्षेत्राधिकार हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मुख्य रूप से चार बिंदुओं के आधार पर समझाया गया है, दिया गया है, जिसमें पहला हमने पढ़ा मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा हमने पढ़ा रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तीसरा हमने चर्चा की अपीलीय क्षेत्राधिकार, और चौथे नंबर पर हमने चर्चा की सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यायिक सक्रियता को जनहित याचिका भी कहते हैं। न्यायिक सक्रियता को जनहित याचिका भी कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका, इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है जनहित याचिका। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। जनहित याचिका को सामाजिक व्यवहार याचिका भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? तो जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। आखिर जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। उन्नीस सौ उन्यासी में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन जनहित याचिका हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की ये नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। तो न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? इसमें मुख्य रूप से हम एक ये भी परिभाषा दे सकते हैं, जब न्यायपालिका व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे संवैधानिक कृत्यों के विरुद्ध दिशा निर्देश जारी करती हैं, इस कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कह सकते हैं। जब न्यायपालिका व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे संवैधानिक कृत्यों के विरुद्ध दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं, ऐसी कार्रवाई को न्यायिक सक्रियता कहा जा सकता है। और दूसरे शब्दों में, किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हो गई। जनहित याचिका, पीड़ित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा जनसामान्य के हित को ध्यान में रखकर दायर की गई याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। पीड़ित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा जनसामान्य के हित को ध्यान में रखकर दायर की गई याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है। न्यायपालिका और अधिकार, नेक्स्ट टॉपिक। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। ये पहला तो अनेक प्रकार की रिटों के जरिए ये रक्षा कर सकता है। बंदी प्रतिक्षिकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। यह अनुच्छेद 32 में दिया गया रिटों से संबंधित। उच्च न्यायालय को भी ये रिटें जारी करने का अधिकार है, सकती है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 226 में दी गई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है तथा किन किन क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार दिया गया है, न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं, जनहित याचिका क्या है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। इसी के साथ ये दूसरी इकाई का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम अगली क्लास में इसी दूसरी इकाई का चौथा अध्याय राज्य स्तरीय स्थानीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।